हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत जैसे ही विवाह के कमरे से निकला था, उसे अनाही का कॉल आया था कि वो ऑफिस से जल्दी जा रही है, तो वो एक बार यहाँ आकर जूली की थोड़ी सी हेल्प कर दे। इसके बाद वेदांत ऑफिस के लिए निकल गया था। उसे भी थोड़ी देर इस माहौल से दूर जाना था ताकि अपने भरे दिल को शांत कर पाए। और फिलहाल उसके पास दोस्त के नाम पर सिर्फ जूली थी, जो उसे थोड़ा बहुत समझती थी और उसका बहुत ख्याल भी रखती थी। जूली के पास जाकर अब वेदांत को बहुत कंफर्टेबल फील होने लगा था। बच्चा सिर्फ अकेली विहा ने नहीं खोया था, उसने भी खोया था। उसको भी उतनी ही तकलीफ हुई थी, उसकी भी उतनी ही उम्मीदें टूटी थी, पर कोई भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं था। पर जूली हमेशा उसे समझती थी। थोड़ी देर बाद वेदांत की गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी और उसके रुकते ही अनाही उसे गुड इवनिंग बोलकर वहां से चली गई। वेदांत ऑफिस के अंदर गया, उसने देखा जूली बड़े गौर से लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी। वेदांत जूली के बगल में बैठते हुए बोला, तो बताइए मैडम, क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? जूली ने वेदांत को देखकर स्माइल करते हुए कहा, नहीं सर, अभी तो आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अगर आप नहीं भी आते तो मैं अकेले कर लेती, पर अनाही मैडम को लग रहा था कि मुझे आपकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आप इस कंपनी के बॉस हैं। वेदांत ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि अनाही को पता नहीं है ना कि तुम मेरी भी बॉस बनी रहती हो, मुझे भी डांट लगाती रहती हो। उसकी इस बात पर जूली मुस्कुरा दी। उसने फिर से वेदांत के चेहरे को देखा और उसकी लाल आंखों को देखकर जूली ने तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या हुआ सर, आप आज फिर से रोए थे क्या? बिहा मैडम ने कुछ कहा आपसे? जूली का ऐसा बोलते ही वेदांत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्म को कुरेद दिया हो और उसकी आंखें फिर से भारी हो गईं। उसने चेयर की बैक पर सिर टिकाकर सामने दीवार को घूरते हुए कहा, उसके बोलने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो बोलने के बाद एकदम ही शांत हो जाती है ना, उसे मेरे जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो मेरा जवाब सुनना चाहती है। मुझे समझ नहीं आता, अगर उसे मुझसे बात ही नहीं करनी है तो वो एक भी जवाब क्यों दे देती है? मुझे कुछ ऐसे जवाब दे देती है कि मेरी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और मुझे लगता है आज वो मुझसे प्यार से बात करेगी, पर आखिर में सब कुछ चकनाचूर हो जाता है, जो बहुत तकलीफ देता है। आई कांट एक्सप्लेन। वेदांत की आंखों के कोनों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने आगे कहा, आज टमेटो बोल रही थी कि उसने मुझे बहुत मिस किया, और फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं हमेशा के लिए उसके पास रह जाऊं, तो तुरंत ही मुकर गई और फिर चुप हो गई और फिर मेरे पास से उठकर चली गई। जूली को वेदांत की आवाज़ में उभरती तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। उसने वेदांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी सर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलिए मैं आपको कुछ फनी दिखाती हूँ। इतना बोलकर जूली ने जल्दी से अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन किया और फिर उसमें ट्रेंडिंग रील्स वेदांत को दिखाने लगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वेदांत मुस्कुरा दे और उसकी तकलीफ थोड़ी दूर हो जाए। और थोड़ी देर बाद ही जूली की ये ट्रिक काम भी करने लगी थी और वेदांत मुस्कुराने लगा था। और उन्हें नहीं पता था कि माधवी ने यहाँ पर उनके लिए भी जासूस लगा रखे हैं, जो रोज़ उन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। इन 3-4 महीनों में उन फ़ोटोज़ का एक पूरा एल्बम तैयार हो चुका था, जिसे माधवी वक्त आने पर इस्तेमाल करने वाली थी। वहीं अनाही भी रूहान के बताए एड्रेस पर पहुंची। वहां जाते ही उसने जैसे ही डेकोरेशन को ध्यान से देखा, उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपने ड्राइवर से कहा, अब आप घर जाइए, यहां से मैं रूहान जी के साथ वापस आ जाऊंगी। ड्राइवर भी उसे हाँ बोलते हुए वहां से चला गया। उसके बाद अनाही ने एक बार खुद को देखा। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। उसे देखकर अनाही ने मुंह बनाते हुए कहा, बेचारे रूहान जी कितनी सारी तैयारी करते हैं और मैं जल्दी जल्दी बनकर चली जाती हूँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है मेरे अंदर, पता नहीं वो क्या सोचते होंगे कि मैं उनके एफर्ट्स की वैल्यू भी करती हूँ या नहीं। हर डेट पर ही मैं ऐसे ही साधारण बनकर चली जाती हूँ। खुद में बड़बड़ाते हुए थोड़ी देर बाद अनाही अंदर पहुँच चुकी थी। ये एक खूबसूरत सा ओपन कैफ़े था, जिसके चारों तरफ वाइट कर्टन्स लगी हुई थी और वाइट कलर की ही लाइट्स लगी हुई थी। बीच बीच में पिलर्स थे और करीब 15 टेबल्स थीं। ये कैफ़े इतना ही छोटा था, पर साथ में VIP भी था, इसलिए यहाँ पर इतने ही लोग कॉफ़ी पीने आते थे। फिलहाल तो पूरा कैफ़े खाली नज़र आ रहा था। काउंटर पर एक आदमी खड़ा था, जिसने शेफ़ की टोपी पहन रखी थी और उसकी सिर्फ पीठ ही अनाही को नज़र आ रही थी। अनाही ने अपने बालों को सही किया और फिर धीरे से बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या यहाँ पर कोई बुकिंग है? वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रूहान था। रूहान मुड़ा और अपनी टोपी उतारते हुए बोला, यस मैडम, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बुकिंग है। रोहान को देखकर अनाही की आंखें फैल गईं। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? अपने कैफे का बिजनेस शुरू किया है क्या? हाथ से लोगों को कॉफी बनाकर पिलाएंगे? अनाही की ये बात सुनकर रोहान जल्दी से काउंटर के पास से निकलकर अनाही के सामने आया। उसने अपनी टोपी उतारी और फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, नहीं नहीं मैडम जी, ये प्रीमियम कॉफी वाला सिर्फ अपनी मैडम जी के लिए कॉफी बनाएगा, सबके लिए नहीं। उसकी इस बात पर अनाही खिलखिलाकर हंसने लगी। रोहान ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे एक टेबल के पास लाकर चेयर पर बैठाते हुए बोला, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वो वापस दौड़ते हुए काउंटर के पास गया और वहां से वो रोज वाले बुके उठाकर लेकर आया, जो इतने ज्यादा थे कि एक साथ उससे संभाले भी नहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर अनाही की आंखें फैल गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, इतने सारे फ्लावर्स, इससे अच्छा था आप मुझे एक फ्लावर दे देते। चौहान ने उन सबको वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, ऐसे कैसे दे देता? अनाही ने कुछ बलून और फ्लावर्स को देखा और फिर चेयर से उठकर रोहान के गले लगाते हुए बोली, हैप्पी रोज डे रोहान जी, मैं भी आपके लिए फ्लावर लेकर आई हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही। इतना बोलकर अनाही ने अपने पर्स से एक छोटा सा फ्लावर निकाला और फिर रोहान की तरफ बढ़ा दिया। रोहान उसे देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। उसने जल्दी से अनाही को अपनी बाहों में उठाया और फिर गोल गोल घूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच मैडम जी, मुझे पता नहीं था कि आप भी मेरी तरह ऐसा कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आपको ये ड्रामेबाजी करने की आदत नहीं है ना। अनाही ने पहली बार कुछ ऐसा किया था, इसलिए रोहान कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसकी वो बच्चों वाली स्माइल देखकर अनाही को भी बहुत सुकून मिल रहा था। उसने फिर रोहान को रोकते हुए कहा, मुझे ऐसे मत घुमाइए, चक्कर आ जाएंगे। रोहान ने फिर आहिस्ता से उसे फर्श पर उतारा और फिर उसके हाथों को पकड़कर उन पर किस करते हुए बोला, थैंक यू सो मच मैडम जी, आपकी वजह से मेरा दिन बन गया। अनाही मुस्कुराई और फिर रोहान के पास बैठकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, और आपकी वजह से मेरी तो पूरी जिंदगी ही बन गई, फिर मैं आपको कितनी बार शुक्रिया बोलूं। अनाही की इस बात का जवाब रोहान के पास नहीं था। ऐसी बातों पर वो अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे अपनी तारीफें सुनने की आदत नहीं है। अनाही उसकी क्यूट सी हरकत पर मुस्कुराई और फिर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, तो आपने सिर्फ बुके देने के लिए इस पूरे कैफे को खाली करवाया?
रोहान ने जल्दी से कहा, नीनी मैडम जी, सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, मैं आपके लिए अपने हाथों से डिनर भी रेडी किया है। एक्चुअली ना, मैं मोहिनी से पूछ रहा था कि आपको मैं क्या गिफ्ट करूं, पर उसने मुझसे कहा कि उसने इंटरनेट पर बहुत ढूंढा, फिर उसे पता चला कि लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद होते हैं जो उनके लिए कुकिंग करते हैं, इसलिए मैंने पूरा एक घंटा लगाकर खाना बनाना सीखा और आपके लिए डिनर रेडी भी कर चुका हूँ। अब बस आपको टेस्ट करके बताना है कि मैं कैसा खाना बनाता हूँ। इतना बोलकर रोहान फिर से काउंटर के पास गया। वहीं अनाही अब प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में इतनी लकी भी हो सकती है।